Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
जरा भी घबराहट नहीं हुई, आपका जो साहस है, आपके जो धैर्य है, किसके साथ तुलना करें? आपके पास जो धैर्य है, किसी के पास भी वो धैर्यता नहीं है। ब्रस्यत् देवगणम् त्रसन् मुनिगणम् नश्यत् प्रपंचम् लयम्। जानते हुए कि भ्रष्यत देवगणम, सारा देवता लोग भाग गए, स्वर्ग छोड़कर भाग गए, मर्त्य लोग छोड़कर भाग गए, पाताल छोड़कर भाग गए, त्राही माम बचाओ बचाओ, केदारनाथ की अवस्था। केदारनाथ तो फिर भी कुछ नहीं हुआ है, यहां तो महाप्रलय की अवस्था आ चुकी है। महाप्रलय में तो क्या होता है, कई प्रकार से महाप्रलय का वर्णन किया है शास्त्रों में। या तो इतना अखंड वृष्टि होती है कि केदारनाथ की बारिश तो कुछ भी नहीं है, सारा पृथ्वी उस अखंड वृष्टि में समुद्र का इतना पानी हो जाता है कि जल जल भर जाता है और सारा पृथ्वी डूबकर प्रलय हो जाता है। पृथ्वी तो अभी डूबी तो नहीं ना है? जब इस तरह वृष्टि होने लग जाता है, पृथ्वी डूबने की अवस्था होती है, तो सब लोग घबरा जाते हैं, देवता मनुष्य गंधर्व यक्ष किन्नर, बचाओ बचाओ, अब जाए कहां, त्राही त्राही होता है। ब्रस्यत् देवगणं त्रसन् मुनिगणं, इतना ही नहीं, बड़े बड़े अष्टांग सिद्ध योगी लोग भी भयभीत हो जाते हैं, त्रसित हो जाते हैं, क्योंकि महाप्रलय में वे लोग भी जिंदे नहीं रहते, उनको भी पता है कि हम जिंदे नहीं रहेंगे। नश्यत् प्रपंचम लयम्, सारा प्रपंच पंच महाभूतों का पंचीकृत कार्य प्रपंच, पंचम पंचम प्रपंचम, ये पंचों का खेल। किन पंचों का? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंचों का खेल, यही तो जगत है, विश्व ब्रह्मांड। तो प्रपंच माने पंचों का, पंचों से बना, पांच तत्वों से बना हुआ पंचीकृत प्रपंच। ना पृथ्वी ना जल, कभी 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 क्या होता है, इतना प्रचंड सहस्र सूर्य एक साथ उदित हो जाते हैं कि पृथ्वी में कहीं कोई समुद्र कोई जल नहीं रहता, सारा सूख कर जल सब सूख जाता है, तो पृथ्वी भी सूख कर परमाणु के रूप में अनंत आकाश में उड़ते हैं, वही महाप्रलय। ऐसा भी वर्णन आया है, कहीं इतना तूफान आ जाता है कि सब उड़ाकर परमाणु बन जाता है, कहीं आग से खत्म हो जाता है। ये पुराणों में अलग अलग प्रलय की प्रक्रिया बताया है, प्रलय की एक ही प्रक्रिया नहीं है, हमारे सनातनियों में वेद में पुराणों में एक ही प्रक्रिया से प्रलय होता है ऐसा वर्णन नहीं है, प्रक्रिया अलग अलग है। ऐसा क्यों महाराज, प्रलय होना है फिर भी ये प्रक्रिया भिन्न भिन्न क्यों, थियरी भिन्न भिन्न क्यों? बोले प्रलय होता ही नहीं है, प्रलय होता ही नहीं, प्रलय किसका होगा है? प्रलय किसका होगा, सृष्टि होती तब ना प्रलय होता। बोलो, मरुभूमि में दिखने वाला पानी सूखेगा किसके, सूर्य की किरणों से सूखेगा है? वो पानी सूखेगा किसके माध्यम से, प्रचंड गर्मी बढ़ेगी तब जाके वो मरुभूमि का पानी सूखेगा? मरुभूमि पानी होता तब न सूखता। तो यदि वास्तव में प्रपंच होता और इस प्रपंच का प्रलय होना होता तो एक ही थियरी से होता, एक ही प्रक्रिया से होता, तो सभी शास्त्र एक ही प्रक्रिया की चर्चा करते। शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, कि उपनिषदों को आप सर्वमान्य प्रमाण मानते हो, लेकिन उपनिषद में जब हम देखते हैं सृष्टि के बारे में, एक उपनिषद में सहमत नहीं है, अलग अलग उपनिषद अलग अलग प्रक्रिया से सृष्टि हुई है बताते हैं। तो कौन सी उपनिषद की बात माने कि सृष्टि किस प्रक्रिया से हुई? शंकराचार्य ने जवाब दिया, यदि वास्तव में सृष्टि हुई होती तो उपनिषदों में सत्य सृष्टि के बारे में एक मत होते, सभी उपनिषद एक ही प्रक्रिया की चर्चा करते, क्योंकि सृष्टि हुई नहीं, भ्रांति है सृष्टि। इसीलिए भ्रांति सिद्ध जो सृष्टि है वो किसी भी प्रक्रिया से हो जाए उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, है? सत्य तो है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है। परमात्मा के बारे में सभी उपनिषद एक मत है, वहां विमतता नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु परमात्मा है, इसलिए सबकी एक मतता है। उसके अलावा बाकी सब मिथ्या है, अतः अन्य वस्तुओं के बारे में श्रुतियों में एक मतता नहीं। जिसमें एक मतता नहीं होती है इसी से सिद्ध होगा कि वो सत्य नहीं है। तो पुराणों में भी ये प्रलय की चर्चा अलग अलग ढंग से वर्णन किया है, कहीं अत्यधिक वायु के कारण ये प्रलय हो जाता है बताया, कहीं अत्यधिक गर्मी के कारण प्रचंड अग्नि उग्र होकर ये प्रलय हो जाता है बताया, कहीं अत्यधिक जल के कारण प्रलय हो जाता है, ऐसा ऐसा वर्णन किया है। फिर ये अलग अलग शास्त्रों में प्रलय का अलग अलग प्रक्रिया क्यों? बोले न सृष्टि हुई है न प्रलय होगा। जब किसी की अज्ञानता से सृष्टि दिख रही है और सृष्टि मान रहा है वो, तब उसको बताना पड़ रहा है कि ये सृष्टि कैसे हुई, तो बोले ऐसे हुई है। और दूसरा फिर पूछता है तो उसको दूसरा दूसरे प्रक्रिया से बता देते हैं, समझे कि नहीं? किसी ने कहा एक के घर में गए, आमरस खाया, बढ़िया स्वादिष्ट हुआ, उसने कहा कि इतना बढ़िया आमरस किस आम का बनाया? एक ने कहा केसर की, केसरपुरी क्या होता है? राजापुरी केसर का ले जो, वो कह रहे केसर तुम राजापुरी पायरी, वो कहती है पायरी। भाई आम का रस कौन से आम का बनता है? वो कहे केसर, वो कहे पायरी, वो कहे हापुस, वो कहे दशहरा, वो कहे चौसा, वो कहे लंगड़ा। इसका मतलब है क्या? किसी से भी बना लो, जो जैसे पूछे वैसा बना दो। सृष्टि में ना आम है ना रस है, है? सभी मन का खेल है कि नहीं? ये बता दिया, एक रूपता नहीं है, तो एक फॉर्मूला नहीं है, किसी से भी बना लो कैसे भी बना लो भाई। तो महाप्रलय जब हुआ, होने का था, हो रहा था, उस घटना को यहां स्मरण कर रहे हैं शंकराचार्य। जब महाप्रलय हो रहा था उस दृश्य को देखकर सब लोग अपने धैर्य को खो गए, और शायद महाप्रलय होता ही इस कारण से उनका धैर्य नहीं रहता, इसलिए वो मर जाते हैं, इसलिए महाप्रलय होता है। अब कोई साहस करके बैठ जाए तो कोई नहीं मरेगा। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं ना, एक व्यक्ति था, उसको भ्रांति हुई, सड़क के किनारे एक डोरी था, उसको डोरी न जानकर सर्प जान लिया। सर्प निश्चय करते ही वह भयभीत हो गया, उसका दिल कांपने लगा, कांपने लगा, तो दौड़ा वो, भागा, ये सर्प मुझे काटेगा करके भागा। भागते भागते वो गिर गया, गिर गया तो उसके टांग टूट गई। तो दौड़े रोते हुए डॉक्टर के पास गया, हाँ डॉक्टर साहब मेरे टांग टूट गई। कैसे टूट गई? बोले एक सर्प आ गया था, उससे डर के मारे में भागा, भागा तो गिर गया, गिर गया तो टांग टूट गई, तो सर्प ने टांग तोड़ दी। अरे कौन से सर्प, कहाँ है भाई सर्प? है सर्प ने टांग नहीं तोड़ी, तुम्हारे डर और भय ने टांग तोड़ी है। बोलो, है कि नहीं? इसीलिए महाप्रलय में सब मरते हैं। क्यों मरते हैं? महाप्रलय में प्रलय के कारण नहीं मरते हैं, डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं, धैर्य नहीं है, साहस नहीं है प्रलय को साक्षी भाव से देखने का, तो डर के मारे सब मर जाते हैं, इसलिए प्रलय हो जाता है। लियो, यही बात यहां कह रहे हैं। और शिवजी साहस से बैठे रहते हैं, सब मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो आराम से बैठे रहते हैं, उनको कुछ असर नहीं करता, ये बात कह रहे हैं। क्या धैर्य है आपकी, क्या साहस है आपकी, इस साहस का मैं कैसे क्या प्रशंसा करूं? किम्रो मस्तव साहसम पशुपते कस्यास्ति शंभो भवत् धैर्यम जयदृश आत्मनः स्थितिरियम चान्यै कथम लभ्यते। आपको ये अवस्था जो आपको प्राप्त हुआ है और किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है इस संसार में, क्योंकि और लोगों की अवस्था क्या है? भ्रश्यदेवगणम त्रसन मुनिगणम, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भयभीत हो जाते हैं और उसी डर के मारे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नश्यत प्रपंचम लयम पश्यन, वो दृश्य को देखते हुए भी पश्यन निर्भय एक एव विहरन, जानते हुए कि सब प्रलय हो जाएगा और मैं अकेला बचा रहूंगा, तो भी वह प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं, उनके मन में प्रलय के दृश्य को देखकर जरा भी क्षोभ नहीं हुआ है। तो ये साक्षी भाव, ये शिव के अलावा जगत प्रलय का साक्षी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस आपके धैर्यता, आपके साहस को, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में बड़ा साधक को, मुमुक्षु को बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। वो तो कहा कि महाराज, आपका जो धैर्य है, आप शिव है, मैं जीव हूं, आपका जैसा पूरा धैर्य मुझे भले ही प्राप्त न हो महाप्रलय में भी साक्षी भाव से बैठने का, कम से कम जब तक जीवन है तब तक प्रारब्ध भोगने का तो धैर्य मुझे दे दो, इतना तो मुझे प्राप्त हो। और ब्रह्म विचार करते करते घर में पत्नी से खटपट हो जाए तो भी साहस सहन करने की शक्ति चाहिए, पति से खटपट हो जाए, परिवार से, कुटुंब से सारा विरोध हो तो भी ब्रह्म विचार न छोड़ू मेरा जीवन में, वो धैर्य आ जानी चाहिए। महाराज आप कृपा करो। आप तो कैसे आहा, पश्यन निर्भय एक एव विहरत त्यानंद्र सांद्रो भवान, भवान आप एक एव विहरंती, महाप्रलय में भी कोई नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी आनंद के समुद्र में आप अकेले मस्त रहते हैं, जब तक समष्टि प्राणियों का प्रारब्ध फल देने के लिए जब तैयार नहीं होता तब तक आपके अलावा न पृथ्वी रहता है, न जल, न आकाश, न तेज, न वायु, न इंद्र, न कुबेर, न ब्रह्मा, न विष्णु। लेव जी, हाँ, सदैव सौम्यदम अग्र आसित एकमेवा अद्वितीय, वही आप है। और फिर आपको अकेले रहने में भी कोई डर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, कहां, कब, महाप्रलय की अवस्था में खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, बागंबर भी, बाघ हो तो बागंबर मिले, दंती तक, हाथी की छाला भी हाथी हो तब चमड़ी मिले, उस समय तो फिर आप अकेले हैं तो नंगे घूमने में भी कोई फर्क, लंगोटी क्यों चाहिए? शर्म तो दूसरों के सामने आती है ना, अपने सामने शर्म आती है? आप लोगों को आती है अपने सामने शर्म? बाथरूम में अकेले हो शर्म लगती है, हैं? भाई आपने अकेले कोई भी नहीं है तो फिर लाज शर्म किस बात की है? तो संसार में सब प्रलय हो गया तो शिवजी के सामने लाल शर्म की कोई बात ही नहीं है, तो फिर बागंबर पहनने की जरूरत है? कुछ नहीं, न खाने को धतूरा, न खाने को भांग, कुछ नहीं, फिर भी आपको कुछ न होने पर भी आप आनंद सांद्रो भगवान, आनंद सांद्र समुद्र में आप ऐसे मस्त होते हैं कि अपने आनंद आपका स्वरूप ही है, किसी विषय को सेवन करके होने वाला आनंद होता तब शायद आपको वो आनंद न मिलता। और आपने स्वरूपभूत आनंद में आप मस्त रहते हैं, इसलिए महाप्रलय हो जाने पर भी आपको कोई डर नहीं। वेदांती अर्थात ब्रह्मज्ञानी अर्थात आत्मज्ञानी को जो साहस मिलता है, जो धैर्य मिलता है, अज्ञानी मूर्खों को कहां से मिलेगा भाई। तो आप कृपा करो वो धैर्य मेरे जीवन में भी आवे। योगक्षे मधुरंधरस्य सकलः श्रेयः प्रद्योगिनः दृष्टा दृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यन्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरंग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम्। हे शम्भो, सम्यक् कल्याणं भवति तत् स्मरणात्, तत् ज्ञानात्, आपके स्मरण से, आपके ज्ञान से कल्याण होगा, इसलिए आपका नाम शम्भो हुआ। योगक्षेम धुरंधरम, आप इतने हैं कि संसार के हर प्राणियों के योगक्षेम को प्रदान करने में धुरंधर हैं, इतने कुशल हैं। तो अपने भक्तों के योगक्षेम का आप खुद वहन करते हैं। भगवान ने गीता में कह दिया योगक्षेमम वहाम्यहम, वो शिवजी के लिए ही तो है। कृष्ण केवल कृष्ण योगक्षेम वहन करते हैं, कृष्ण के हृदय में जो चैतन्य है वही तो शिव है। वही कृष्ण के हृदय में बैठकर शिव बोल रहे हैं योगक्षेम वहाम्यहम। तो वही शंकराचार्य कहते हैं कि योगक्षेम वहन करने में आप धुरंधर हैं। धुरंधर इसलिए हैं, कहते हैं जब छत्रपति शिवाजी के राज्य में अकाल और दुर्भिक्ष पड़ गया, तब सब जल पानी अन्न हाहाकार हो गया था, परंतु शिवाजी के राज्य में किसी को भूखा मरने नहीं दिया। अन्न की व्यवस्था, जल की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी थी। तब समर्थ रामदास ने पूछा कि सारे तरफ अकाल पड़ा हुआ है, तुम अपने प्राणियों की रक्षा, प्रजा की रक्षा कैसे कर रहे हो? बोले महाराज, हमने समय में बुद्धि पहुंचाई थी और अन्न सुरक्षित रखा था, जल भंडार बनाकर रखा था, आपातकाल में काम ला के, ये पहले से हमने सोचा था और अब उसी के चलते सबका योगक्षेम हो पाया। अच्छा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। समर्थ रामदास शिवाजी को घूमने ले गए। बड़ा भारी चट्टान बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर के पीछे पड़ा हुआ एक चट्टान कहां से आ गया? बापा, टीवी में देखा था, 40 फुट लंबा। कितना लंबा फुट और कितना, मैं लगता है एक जो क्रेन है वो उठा नहीं पाएगा। वो कहां से आ गया, विचित्र। ऐसा ही बड़ा भारी चट्टान पत्थर था, कहते हैं शिवाजी को कहा कि हे शिवा तोड़ इसको। तो उनके पीछे पीछे सेना थे, शिवाजी ने लगाया तोड़ो इसको, गुरुजी की आज्ञा है। क्यों, कैसे, किस लिए, प्रश्न नहीं, आज्ञा थी गुरुजी की, तोड़ दिया। तोड़ा तो बीच में कीड़ा बैठा हुआ था। बड़ा आनंद से वो प्रसन्नता पूर्वक उस पत्थर के अंदर कीड़ा बैठा हुआ था, उसी के बगल में पानी भी था। लेव जी, ऐ शिवा इसको रसद तूने पहुंचाया, ये पानी तूने दिया या इसको, है तूने पिलाया इस जीव को पानी, तूने भेजा इस जीव को जीने के लिए अन्न, क्या विचार। अच्छा तो आश्चर्य हो गया शिवजी, ये क्या हो गया भगवान, है तो फिर तू ऐसा क्यों कहता है कि सारी व्यवस्था मैंने मिलाई है? अरे बाबा, इस कीड़े को पानी जिसने दिया है उसी ने तेरे प्रजा को पानी दिया है। इसको खाने के लिए जो कीड़ा एक उसके सामने पड़ा हुआ है वही कीड़ा खाकर ये कीड़ा बचा है। जीवो जीवस्य भोजनम, तो जिसने वो व्यवस्था मिलाई है उसी ने सारे प्रजाओं के लिए अन्न की व्यवस्था मिलाई है। तो कामो काम मैंने सब व्यवस्था मिलाई कहता है, अहंकार छोड़ दे, अभिमान छोड़ दे, उसी परमात्मा का उपकार मान। छत्रपति शिवाजी की आंख खुल गए महाराज, ओहो ऐसा है, जय हो परमात्मा। तो ये सारा राज्य भी वही परमात्मा चला रहा है। महाराज अब अपनी जरूरत नहीं है, हम तो अब राख लपेटते हैं और सन्यासी होकर उसी के भजन के लिए चले जाते हैं। महाराज लेव चावी, लेव सिंहासन, सिर का मुटुक मुकुट निकाला और समर्थ दामदास के चरणों में रख दिया और कहा कि एक लाल कपड़ा दे दो, चलते हैं हम तो देवघाट है। शिवजा ने कहा कि संकल्प पक्का? बोले पक्का। ठीक है जा, तू सन्यासी हो जा। तो जाने लग गए। समर्थ दास ने कहा कि रुक जा, अब तो तू मेरा चला हुआ ना। बोले हाँ, अब गुरु की जो आज्ञा पालन करनी है, ये साम्राज्य तूने मुझे दिया है, तू मेरा चेला हो गया है, अब मेरी आज्ञा से ये मुकुट सिर में रख और फिर चला। मेरी आज्ञा से राज्य मेरी है, तो ये नहीं कहना कि मेरी राज्य है, कल तक तेरी थी अब मेरी है, जा चला राज्य। तब से भगवा कपड़ा है शिवाजी के नाम पर, शिवसेना ने, तब से जोगी का राज्य है ये प्रतीक के रूप में, समर्थ रामदास का राज्य है ये, कोई किसी का न उद्धव ठाकरे का है, न राज ठाकरे का, न बाल ठाकरे का, न शरद का, न भरत का है, किसका है राज्य ये होना चाहिए, ये प्रतीक था वो। तो अब तो फिर अपने अपने झंडा फहरा रहे हैं, क्या आश्चर्य। योगक्षेम, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है। योगक्षेम धुरंधरस्य, पत्थर के अंदर जीव पहुंचा बैठा है तो वहां पर भी जल और पानी और रसद भोजन की व्यवस्था पहुंचाने में आप ही कुशल है। सकल श्रेय प्रद उद्योगिना, और सारे प्राणियों को श्रेय प्रदान करने में भी आप तत्पर रहते हैं। उद्योगिना, श्रेय प्रदा उद्योगिना, सतत सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं। दृष्टा दृष्ट मतो उपदेश कृतिनो, दृष्ट मत और अदृष्ट मत, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसका, और जो नहीं दिख रहा है स्वर्ग आदि पाप पुण्य, प्रत्यक्ष दिख रहा है ये सुख दुख आदि, दृष्टा दृष्ट मत सिद्धांत का उपदेश करता भी आप ही है। बाह्यांतरव्यापिनः, आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, अंदर भी व्याप्त हैं बाहर भी व्याप्त है। सर्वज्ञस्य दयाकरस्य, हे शिवा आप सर्वज्ञ सबको जानते हैं, एक कीड़ा पत्थर के बीच में बैठा हुआ हो तो उसको भी आप जानते हैं और उसको भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था मिलाते हैं है? आपकी दृष्टि से जगत का कोई जीव अदृष्ट नहीं है। सर्वज्ञस्य दया करस्य, आप तो दया के खजाने हैं। दया आकर, आकर माने खजाना। दया करस्य भवतः किं वेदितव्यं मया, आपको मैं कैसे जानूं, आपकी महिमा को मैं कैसे जानूं। शंभो त्वं परमांतरंग इति मे, हे शंभो आप अंदर भी हैं तो मेरे हृदय में भी हैं। इति मे चित्ते स्मराम्यन वहम, इसलिए मैं अपने चित्त में सतत आप जो सर्वांतर्यामी के रूप में विद्यमान हैं, मेरे भी अंतरात्मी के भी रूप में विद्यमान हैं। किम वेदितव्यम, आपके स्वरूप को मैं जानना चाहूं तो जान तो नहीं सकता हूं, लेकिन आपको स्मरण कर सकता हूं। अनवहम, रात दिन में आपका ही स्मरण करता रहूंगा, इतनी से ही मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। और योगक्षेम की बात है, आप धुरंधर हैं, मुझे क्या चिंता है, कह चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरोगी यति, इस श्लोक का यही अर्थ है, यही भाव है, और आगे क्या है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
ओम।